संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में मदालसा जी का सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। ऋतध्वज और मदालसा जी बड़े प्रेम से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अभी इनका प्रथम पुत्र की प्राप्ति होती है और ऋतध्वज जी उनका नामकरण करते हैं। जैसे ही ये नामकरण करते हैं तो मदालसा जी मुस्कुराती हैं। उन्होंने कहा, आप मुस्कुराए क्यों? वो बोले, आपने किसका नामकरण किया है, शरीर का? वो कहने लगे कि मैंने इनका यथायुक्त नामकरण किया है, मेरे राज्य संभालेंगे। बोले, ये जीव है और जीव अविनाशी है, वो ईश्वर का अंश है। उन्होंने यहाँ से अपनी वेद का जो वो ज्ञान था उन्होंने शुरू किया और अपने छोटे से बालक को उन्होंने वैदिक ज्ञान देना शुरू कर दिया। मदालसा जी ने, वो छोटा छोटा बच्चा वैदिक ज्ञान से पल बढ़ रहा था। अभी जैसे ही वो 7-8 साल का हुआ, उसे पूर्ण वैराग्य हो गया संसार से और वो 7-8 साल की अवस्था में ही सब कुछ घर बार छोड़ करके वन की राह ली, उसने संन्यास ले लिया। और मदालसा जी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ऋतध्वज जी का मन बड़ा खिन्न हो गया कि मैंने राजपाट के लिए अपने पुत्र को तैयार किया था, इसने संन्यास दिला दिया पुत्र को, और माँ इतनी प्रसन्न थी कि ये भगवत प्राप्ति करेगा और मेरा जीवन सफल होगा। अभी कुछ समय के पश्चात दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई, ने फिर से राजा ने नामकरण किया। बड़े धूमधाम से बहुत लोगों को इन्होंने इनवाइट किया, सबको आमंत्रण दिया। और एक नामकरण के पश्चात जैसे ही इसका भी नामकरण हुआ, मदालसा जी फिर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं ऐसे? वो बोला, फिर से आप वही काम कर रहे हैं। किसका नामकरण कर रहे हैं आप, जीव का किस शरीर का? ये ऋतध्वज थोड़े कन्फ्यूज थे कि आप क्या चाहती हैं। कि मैं तो वही चाहती हूँ, इस संसार में जीव आता किस लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवत प्राप्ति ही होनी चाहिए। इस बार ऋतध्वज तैयार थे कि नहीं, मैं भगवत प्राप्ति के लिए नहीं अपने बेटे को जाने दूंगा, मैं इसे राजपाट में ही लगाऊंगा। पर माँ बच्चे के साथ लगातार रहती है, तो उसने अपने बेटे को फिर से वैसे ही तैयार किया। वैदिक ज्ञान प्रवचन वो नित्य उसके चलते रहे और ये भी 7-8 साल की अवस्था में पूर्ण वैरागी संत हुआ और इसने भी गृह त्याग कर दिया। ऋतध्वज फिर खिन्न हुए, तीसरे पुत्र की फिर प्राप्ति हुई, तीसरे का फिर नामकरण किया गया, फिर से मदालसा जी मुस्कुराई। अभी ये परेशान थे, इन्होंने हाथ जोड़े कि ऐसा मत करो तुम। उन्होंने बोले, नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए ही ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, आपने नामकरण किया, हम देखते हैं आप नामकरण कर रहे हैं, इसलिए इन पंडितों से नामकरण इसलिए कराते हैं कि ये राजपाट अच्छे से संभालेगा और ये इनका भविष्य बताते हैं। मैं बता रही हूँ कि इनका भविष्य ये होगा, देखो आप कैसे होता है। इन्होंने फिर वैदिक ज्ञान देना शुरू किया और फिर पहुँचा दिया उनको वन। तीसरा भी वन में जा चुका। ये प्रथम माँ है जो अपने हर पुत्र को सन्यासी बना रही है। कोई माँ अपने पुत्र को सन्यासी नहीं बनना देखना चाहती। मदालसा जी है ऐसी माँ, ये चाहती हैं कल्याण, सबका कल्याण हो, जो भी मेरे गर्भ से निकले वो दूसरा जन्म ना ले। इनका कहना है कि वो दूसरा जन्म लेगा ही नहीं, यही इन्होंने ऋतध्वज से शुरू में कहा था कि जो मेरे से पुत्र उत्पन्न होगा उसका दूसरा जन्म कदापि नहीं होगा। वही हुआ। फिर चौथा, ये चौथे पुत्र उत्पन्न हुए अभी, तो इन्होंने कोई नामकरण का इन्होंने कोई आयोजन नहीं किया और इन्होंने मदालसा को सौंप दिया पुत्र। इन्होंने कहा, मैं आपसे ही चाहता हूँ मेरा वंश चले, मुझे नहीं पता, आप भगवत प्राप्ति करा लो, जो कराना करा लो, बस मेरा वंश चले, राज्य संभलता रहे, आगे ये राज्य हमारे पुत्रों में वंशों में चलता रहे, मैं ये चाहता हूँ, बाकी तुम्हें जो करना है करो। वो समझ गए थे कि मदालसा की आज्ञा की अनुमति के हम कुछ नहीं कर सकते। तो मदालसा जी मुस्कुराई, इस बार मदालसा जी ने नामकरण किया। अब ये मुस्कुराए कि इसका मतलब, उन्होंने नाम रखा लार्क, इसका मतलब होता है पागल कुत्ता। वो मुस्कुराए, क्या नाम रख रहे हो तुम? वो बोले, जीव अविनाशी है, भगवान का अंश है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही मैं तुम्हें पहले समझाना चाहती। तुमने उत्तम उत्तम नाम रख करके, जो राजाओं के नाम होते हैं वो अपने पुत्रों के नाम रखे, कहाँ है वो, सारे सन्यासी घूम रहे, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना, मैं इसे भी पहले राजा बनाऊंगी, उसके बाद राजा बनने के बाद जब वंश चल जाएगा उसके बाद इसे भी खींच के उधर ही लाना है। ये मदालसा जी की प्रतिज्ञा थी। खैर, अपने पुत्र को इन्होंने तैयार किया, पुत्र राज्य संभालने लगा और मदालसा जी और ऋतध्वज जी ये परोपकार निमित्त समाज के लिए पूरे जो भी इनसे होता था वो सब ये कर रहे थे और भगवत भक्ति में पूरे तल्लीन रहते थे। तो मदालसा को पता था कि अब भगवत प्राप्ति हमें दूर नहीं है, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपना सारा राज्य दे करके मदालसा और ऋतध्वज ये इन्होंने भी वन की राह ली। लेकिन वन में जाने से पहले इन्होंने अपनी एक अंगूठी अपने छोटे पुत्र को दी और कहा कि राज्य संभालते हुए जब तुम पे घोर आपत्ति आए तो इस अंगूठी को खोलना, इसमें तुम्हें कुछ मिलेगा और इसमें जो लिखा होगा उसका पालन करना। लेकिन ये अंगूठी में से ये तुम तभी निकालना जब घोर विपत्ति हो। उसने कहा ठीक है माँ। ये आज्ञा देकर के माता पिता तो वन की राह ली उन्होंने और वो वन में तप करने लगे और भगवान निमित्त साधन करने लगे। वहीं पे उनकी जो भेंट हुई है, जो तीनों पुत्र सन्यासी बनकर रह रहे थे, तीनों पुत्र तो महान सन्यासी हो चुके थे भगवत प्राप्ति के, उसमें साधना में वो इतने तल्लीन थे भगवत प्राप्ति की, वो भगवत प्राप्ति के बिल्कुल समीप थे। मदालसा जी ने अपने तीनों पुत्रों को कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई अभी मोहमाया के चक्र में पड़ा हुआ है, तो अभी उसके पुत्र हो चुके हैं, आगे उसका वंश चल गया है, मैं चाहती हूँ उसको खींच के लाओ, तुम उसको भी संन्यास दिलाना है। उन्होंने कहा जो आज्ञा माता, हम वही करेंगे। तीनों पुत्र अब वन से चले गए कहाँ, मदालसा के भाई के पास यानी अपने मामा के पास। उन्होंने, वो राजा थे, उनसे सहायता मांगी कि हमें आप सहायता दीजिए और जो हमारा छोटा भाई है वो हमारे हक का राज्य लिए हुए है, बड़े हैं मैं, राज्य पे हमारा अधिकार है, तो हम वन गए थे कुछ दिन के लिए पर राज्य तो हमारा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनसे बात करी संधि की कि भाई तुम्हारे भाई आए इनको राज्य लौटा दो। उसने मना कर दिया, भाई राज्य मेरा है उनको क्यों दूं मैं, मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। बोला ठीक है, अधिकार तो उनका बैठता है। बोला नहीं तो फिर ठीक है, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। मामा ने कहा हम उनकी तरफ से युद्ध करेंगे। जब उसने देखा मामा की विशाल सेना है, तो इनका सामना नहीं कर पाएगा, तो वो मान गया कि ठीक है मैं राज्य देने के लिए तैयार हूँ। जब वो राज्य देने के लिए तैयार हुआ, उसे याद आया बड़ी विपत्ति का उसके सामने समय था कि सारा राज्य आज उसके हाथों से छिन रहा है, घोर विपत्ति में था। उसने वो अंगूठी निकाली और वो पढ़ा। वो पढ़ने के बाद माता के उसमें प्रवचन मिले, उसे बहुत छोटे से और गूढ़ प्रवचन उसे मिले, सब कुछ खत्म होने वाला है पुत्र, सब कुछ खत्म होने वाला है एक दिन, और वो समय जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, उस दिन सोच लेना कि एक दिन ये शरीर भी छूट जाएगा, वो निमित्त वो साधन कर लो जिसके लिए तुम आए हो। उसने सोचा मेरी माँ क्या कहना चाहती हैं। तो बड़े भाई आए, सारा राज्य दिया, उनके सुपुर्द किया उन्होंने, और उन्होंने पूछा कि मेरी माँ की क्या आज्ञा है। तो यहाँ बड़े भाइयों ने उसको गले से लगा लिया, अपने सीने से लगाया और कहा हमें राज्य से कोई लालच नहीं है, राज्य का हमें कोई प्रलोभन नहीं है इसका, हम तुम्हें भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जो हमारी माता का कर्तव्य है, और वही शिक्षा तुम्हें दी गई है। वहीं पर उनके मामा जी भी बैठे हुए थे जब ये तीनों भाई उसको समझा रहे थे, तो मामा को भी ज्ञान हो गया है कि भाई ये तो सब कुछ एक दिन छूटना ही है, तो क्यों ना समय रहते इसे छोड़ दे। यही माँ कह रही है उनकी, मदालसा जी, कि समय रहते छोड़ दोगे और सही मार्ग पर चल दोगे तो तुम्हें दोबारा इस जन्म में नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो समय ऐसा बलवान है कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगे और तुम जिस मोहमाया में फंसे उसी मोहमाया में चक्र में फंसते फंसते अनंत जन्म बिता दोगे, कभी निकल नहीं पाओगे, जितनी शीघ्रता से निकल सको निकल लो अभी। उसकी भी समझ में आ गया, वो अपने भाइयों के साथ में चल दिया। मामा भी राजपाट अपने बच्चों को दे करके वो भी उसने भी वन की राह ली, और इस तरह से मदालसा जी के कहने के अनुसार ही उसके सारे चारों बच्चे जो हैं वो भगवत प्राप्ति की राह पे चले और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। मदालसा जी तो भगवत प्राप्त संत हैं ही, और इसीलिए कहा जाता है कि मदालसा जैसी माँ नहीं है कोई भी। तो हरिस्मरण, हरीश श्री भगवान अपने भक्तों की, अपने दास की, अपने जितने भी प्रेमी भक्त हैं उनकी चरणों की रज हमें भी प्रदान करें, यही लालसा और यही आशा हमें करनी चाहिए। तो हरिस्मरण।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।